ये SBS उर्दू है। विक्टोरिया की एक बड़ी रिसाइकलिंग कंपनी ने रिसाइकिल होने वाला मवाद लेना बंद कर दिया है, जिसके बाद रियासत में सड़कों के किनारे ढेर किए जाने वाले कूड़े करकट में से रिसाइकिल होने वाली तमाम अशिया भी ज़मीनी गढ़ों या लैंडफिल में चली जाएंगी। ये ऑस्ट्रेलिया में रिसाइकलिंग के बढ़ते हुए बहरान की एक इजाफी कड़ी है, मगर बहुत से ऐसे इंफरादी काम हैं जो हम खुद कर सकते हैं और इस तरह रिसाइकलिंग की सनत पर इन्हिसार को कम किया जा सकता है। पिछले साल चीन ने ऐलान किया कि वो बाहर के किसी मुल्क से ऐसा कोई कूड़ा करकट नहीं लेगा जिसमें रिसाइकिल होने वाले मवाद की तादाद 99.5% से कम होगी। डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल फ्यूचर्स डेमियन जोर को इसकी वजाहत करते हुए कहते हैं,
बेसिकली दे हैव नाउ सेड वी डोंट वांट दिस एनीमोर टू हैव रबिश कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज अनलेस इट्स ऑफ अ रियली रियली प्योर क्वालिटी एंड सेइंग वेल वी डोंट रियली prefer to be importing rubbish of a quality that's not making it a great resource to recover value from.
चीन से इस तरह के कचरे और खाम माल को लेने पर पाबंदी के बाद फिलीपाइन, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड ने इस तरह के कचरे को लेने में मुस्तादी दिखाई, मगर इसका नुकसान कुर्रे अर्ज पर कसाफत या पोल्यूशन में इजाफे की सूरत में निकलेगा, क्योंकि इन मुल्कों के पास भी रिसाइकलिंग की बड़ी सहूलियात मौजूद नहीं और नतीजतन इन मुल्कों को भेजे जाने वाला कूड़ा लैंडफिल की शक्ल में कुर्रे अर्ज पर कसाफत बढ़ाने का सबब बनेगा। दुनिया भर में रिसाइकलिंग की सहूलियात कम होने के बायस ऑस्ट्रेलिया की रिसाइकलिंग की सनत पर दबाव में इजाफा हो रहा है। विक्टोरिया की SKM रिसाइकलिंग कंपनी रियासत का निस कूड़ा करकट रिसाइकिल करती थी, मगर अब SKM ने इस सिलसिले को खत्म करने का ऐलान किया है। इसके नतीजे में रिसाइकिल होने वाला मवाद भी जमीन में फैल रहा है। पानी की रवानी के रास्तों की बंदिश और रिहायशी इलाकों में खतरनाक गैसों वाले मवाद में इजाफे का खतरा मंडला रहा है। मुजरे सेहत मवाद की मैनेजमेंट के शोबे के डीकन यूनिवर्सिटी के लेक्चरर ट्रेवर थॉर्टन इंफरादी इकदामात की जरूरत पर जोर देते हैं।
So every individual really has to take some responsibility in this. And what we've got to do is first of all start avoiding what we purchase or reducing as much and indicating to the supermarkets, the retail stores that you don't want that sort of packaging. Sometimes it's not so easy. So the next thing to do is to make sure you put it into the right bin. We've got to stop putting contamination into the recycling bin.
Dr. Thornton ka kehna hai ki kis cheez ko kis tarah talf karna hai, kis cheez ko किस तरह की डस्टबिन में फेंकना है, इस सिलसिले में मालूमात की कमी है। मसलन प्लास्टिक की थैलियाँ रिसाइकलेबल होती हैं, मगर उनको कौंसिल की तरफ से मिलने वाले खसूसी रिसाइकिल बिन में डाला जाना चाहिए। इसी तरह कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरियों जैसी अशिया भी सिर्फ उसके लिए मुख्तस की गई बिन्स में डालने से वो रिसाइकिल प्लांट तक पहुँचने में कामयाब होंगी।
And then they'll actually be recycled and reduce the impact on the environment. Councils need to be a lot more proactive in advising people, putting a lot more messages out. There's a lot of good advice out there, but we need to chase it up.
ऑस्ट्रेलिया के महकमे माहौलियात और तवानाई के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ पिछले साल दिसंबर तक 400,000 टन का कूड़ा करकट बैरून मुल्क भेजा, मगर माहिरीन का कहना है कि अब ऑस्ट्रेलिया को रिसाइकिलिंग के लिए खुद पर इन्हिसार करना होगा। प्रोफेसर जेर को कहते हैं कि शुरू में शायद मुश्किलात का सामना हो, मगर माहौल को बेहतर रखने के लिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ही रिसाइकलिंग की सहूलियात की फराहमी सबसे कारामद और देरपा तरीका है।
It's really something that needs national ambition but localized responses which will be different in each state, and it's things like investing in new infrastructure to allow us to have both recycling go back into products locally.
ऑस्ट्रेलिया में प्लास्टिक के साथ साथ कोल सीम गैस और कोयले की कनकनी से कसाफत में इजाफे की बहस भी जारी है और इसकी मुखालफत और हिमायत करने वालों के ग्रुप मौजूद हैं। पाकिस्तानी नजाद ग्रीन सेनेटर महरीन फारूकी से जब मैंने कोयले और कोल सीम गैस के हवाले से माहौलियाती आलूदगी का सवाल किया तो उनका कहना था,
कोल सीम गैस नई है ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये एक नई चीज है, इसलिए हम यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई है अभी कि इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं. हमने अमेरिका में देखा है जहाँ ये बहुत सालों से हो रही है कि बहुत डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट्स हैं पानी पर और जमीन पर. तो हमें जो है उनसे सबक सीखना चाहिए. अपने एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं है जबकि हमें पता है कि ये डिस्ट्रॉय करते हैं. और इकोनॉमिक एडवांटेज की जो बात है जिसको अक्सर जो है गवर्नमेंट्स वो पुश करती हैं, वो इकोनॉमिक एडवांटेज भी बहुत शॉर्ट टर्म होगा. अब जब हम एक दफा पानी और जमीन को बर्बाद कर देंगे तो वो इकोनॉमिक एडवांटेज खत्म हो जाएगा. और जो अल्टरनेटिव्स हैं, असल मसला ये है कि हमारे पास हैं अल्टरनेटिव्स. हमें नहीं है जरूरत ज्यादातर अब जो है कोयला खोदने की या कोल सीम गैस निकालने की. रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो मौजूद है इसी वक्त. कोयला खोदना और कोल सीम गैस खोदना, ये इसमें कोई बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी नहीं.
ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे इस वक्त गैर मुल्की कंपनियां, खासतौर पे चाइनीज कंपनियां बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं. तो अल्टरनेट जो बताए जाते हैं वो कितने मुमकिन है कि उसके ऊपर अमल दरामद जल्द से जल्द होके बजट के खसारों को कम किया जाए और बेरोजगारी कम की जा सके?
पहले जो आप कह रहे हो कि लॉबीज हैं डिफरेंट, बिल्कुल हैं लॉबीज, और जो है एंटी क्लाइमेट चेंज लॉबी वो बहुत स्ट्रांग है. लेकिन आई थिंक ये जरूरी है लोगों को बताना कि वो बहुत छोटी लॉबी है. जो साइंटिस्ट की एग्रीमेंट है, 97% से ज्यादा साइंटिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है. और जो हम लोग कर रहे हैं, एग्जाम्पल कोयला बर्न कर रहे हैं एनर्जी के लिए, और जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसकी वजह से हो रहा है. तो अक्सर ये जो है ना बैलेंस डिबेट की तरह दिखाया जाता है कि जो आधे लोग ये कह रहे हैं आधे लोग ये कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है. वास्ट मेजोरिटी ऑफ लोग और ये सालों से कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है और ये ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से है. लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक बहुत छोटी लॉबी है जिनका इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट पर और वो कॉरपोरेशंस भी उसमें इन्वॉल्व हैं. तो ये अब गवर्नमेंट को एविडेंस देख के डिसीजन बनाना जरूरी है. तो ये लॉबी जो उन पे इन्फ्लुएंस कर रही है उसकी वजह से नहीं. दूसरी जो जॉब्स की बात है, बहुत सी स्टडीज हो चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया में और बहुत क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस ने की हैं. और रिन्यूएबल एनर्जी में वो कह रहे हैं कि अगले कुछ सालों में कुछ 70,000 से 80,000 जॉब अवेलेबल हैं सिर्फ न्यू साउथ वेल्स में. इनक्रेडिबल तरीका है जॉब्स ग्रोथ करने का.
ग्रीन सेनेटर महरीन फारूकी कह रही थीं कि कोयले और कोल सीम गैसेस के माहौलियाती मनफी असरात इतने ज्यादा हैं, अगर उससे कुछ मामूली फायदा हासिल भी होता हो तो वो कसाफत के बहुत बड़े खतरे और नुकसानात के सामने बहुत छोटा सा फायदा हो सकता है. मगर रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाला प्लास्टिक हम सबकी अपनी दस्तरस में है. कितना प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाए, प्लास्टिक की थैलियों को किस तरह तल्फ किया जाए, और क्या वो वक्त आ गया है कि अब प्लास्टिक थैलियों के बजाय कपड़े और कागज की थैलियों की तरफ वापस पलटा जाए. आने वाले दिनों में ये मौजूदात भी माहौलियात की बहस का बड़ा हिस्सा रहेंगे. क्या आपको रिसाइकलिंग बिन के बारे में पता है कि किसमें किस तरह की चीज फेंकना चाहिए? अब फर्ज कीजिए मेरे हाथ में एक कलम है और इस कलम की इंक खत्म हो गई है. अब मैं इस कलम को क्या करूँ? मेरे इर्द गिर्द कोई डस्टबिन नहीं है, कोई प्लास्टिक की थैली नहीं है. इसको रिफिल भी किया जा सकता है. जी हाँ, यानी बॉल पेन में दूसरी रिफिल डाली जा सकती है, मगर शायद जितने में रिफिल आएगी उससे कम में ही नया पेन मिल जाए. चलिए एक लम्हे को मैं कलम की कीमत भूल जाता हूँ, इसकी रिफिल कहीं से ढूंढ कर खरीद कर लाता हूँ और इसमें डालता हूँ. लीजिए, एक और मसला और आन खड़ा हुआ. मैं रिफिल तो ले आया, मगर पुरानी वाली रिफिल जो खत्म हो गई है, अब उसे कहाँ फेंकूँ? इस तरह के हजारों सवालात जवाब तलाश कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में माहिरीन. रिसाइकलिंग के नित नए तरीकों पर तहकीकात जारी रखे हुए हैं. देखना यह है कि आने वाले दिनों में रिसाइकलिंग का पैगाम आम ऑस्ट्रेलियन तक पहुंचता है या नहीं. क्या आपको ये फीचर पसंद आया? अपने पसंदीदा पॉडकास्ट प्लेयर पर SBS उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए.